नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरला में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती है। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री रामफल ने भारत के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में विशेष रुचि दिखाई है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोत की टीम का सामना चीन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।